आज 3 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए मंगलमय हो और आज हम आध्यात्मिक सम्मेलन के जो विषय दिए गए थे उनका चौथा विषय है आधुनिक शिक्षा के लाभ और हानियाँ। ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने दे दिया था कि जिससे कि हमें कुछ लिखने की आदत पड़े, हम कुछ लिखे, कुछ सोचे, कुछ समझे, अपने दिमाग को तराशे। तो इस तरह से ये चौथा जो विषय है इसके विषय में मैं कुछ आपको बताऊंगी, सुनाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। कहते हैं पशु के सींग होते हैं और पूंछ होती है, लेकिन मानव के ना पूंछ होती है ना सींग होता है, लेकिन जीवात्मा भीतर एक जैसी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल एनिमल कहा जाता है। है तो वो एनिमल लेकिन सोशल है, सामाजिक, कैसे समाज में जीना है, कैसे जीना है, उसके लिए उसे तैयारी करनी होती है। तो हम देखते हैं कि 5 साल के बाद बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं और वहाँ जाकर के बच्चा शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चे मैट्रिक पढ़ते हैं, कुछ बीए, कुछ एमए, कुछ वो इंजीनियर, कोई डॉक्टर, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो बड़ा वाइड है हमारा सिलेबस। कुछ भी हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा कहाँ तक विश्वव्यापी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि मनुष्य आज की शिक्षा को लेकर के क्या करता है, आज की शिक्षा में क्या देती है, जो कि तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पर चलना, उन उपदेशों को मानना, ये हमारे अपने भीतर की जागृति पर है। इससे पूर्व हमें कहीं हमें शिक्षा की डेफिनेशन परिभाषा समझनी होगी। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा बच्चे के भीतर के गुणों को बाहर लाती है। बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको ये बताया कि शिक्षा बच्चे के भीतर जो गुण है, जो दैवीय गुण है, उनको बाहर लाती है। ये शिक्षा का काम है। अगर शिक्षा बच्चे के भीतर के गुणों को बाहर ना ला सके तो वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा कहलाने के योग्य नहीं है। हम देखते हैं कि एक स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के भीतर के दैवी गुण बाहर प्रकट हो जाते हैं और कुछ वैसे ही बच्चे निठल्ले हैं, झूठ हैं, बदमाश हैं। ये क्या है सब? फिर सोचना पड़ता है इसके विषय में कि ये सृष्टि जो है 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजत और तम। 3 गुणों के मिश्रण से ये संसार बना हुआ है। जैसे किसी को सोने का आभूषण बनाना है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत खोट डाल देते हैं, फिर कहते हैं आभूषण अच्छा बना। अगर ये वो सोने का बनाना हो तो वो कहते हैं कि सुनहरा नहीं बना सकता आभूषण उसको। ऐसे ही परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई थी तो इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों का मेल करके ये सृष्टि बनाई गई है। तो सतोगुणी मनुष्य ज्यादा स्वाभाविक, दयावान, सुशील और गुणवान होता है, उसके भीतर दैवी गुण होते ही हैं। वह रजोगुण सारा चंचल होता है, भाग दौड़ में खुश रहता है। वह तमोगुण आलसी, निकम्मा। तो 3 प्रकार के जो गुण हैं, जिस बच्चे में जो गुण अधिक होगा, शिक्षा द्वारा वो गुण बहुत शीघ्र बाहर आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए कि हमारी जो कर्म विधान परिपाटी है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, तो जन्म जन्म कर्म से ही संबंधित है। लेकिन फिर भी शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मेथड है जिससे हम जो भीतर गुण है, बच्चे के भीतर गुण है, उनको तो बाहर लगते ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन बच्चों को जिनमें रजो और तमो ज्यादा है, शिक्षा की कोशिश होती है, ये प्रयत्न होता है कि हम उनको रजोगुण से सतोगुण की ओर ले जाएं और तमोगुणी बच्चे को रजोगुणी बनाएं। ये शिक्षा का कर्तव्य है, तभी हम उसको शिक्षा कह सकते हैं, वरना वो शिक्षा नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने हमारे ज्ञान के का विस्तार होता है, मतलब बच्चे के ज्ञान का विस्तार होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, संस्कृति और नैतिकता को समझने में मदद मिलती है, और ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली कुशल बनाती है, शालीन बनाती है, मनुष्य के व्यक्तित्व को बिखारती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से हम विश्वव्यापी भावना तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना को अपना लेते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कन्याओं के भी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। शिक्षित कन्याएं अपने माता पिता का घर छोड़ देने के पश्चात नया घर या ससुराल संभालने में सक्षम हो जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें स्वावसर प्रदान करती है कि हम मानवीय जीवन को सुंदर तथा सर्वव्यापक ढंग से जी। अगर हम शिक्षा के अर्थ को भलीभांति समझ पाए तो मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा बालक बालिकाओं के भीतर के गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करते हुए उसे एक महान मनुष्य बना देती है। असली में शिक्षा का अभिप्राय ये है कि शिक्षा बालकों के भीतर के गुणों को बहुत लाए। मानव इस सृष्टि में सर्वोत्तम है, 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांटा गया है, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी आदि, पिंड जो पिंड से पैदा होते हैं, मनुष्य और पशु, और एक होते हैं उद्भव जो जमीन से पैदा होते हैं, और एक होते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, जुए आदि। तो देखा जाए तो ये जो है पिंड से पैदा होने वाले, इसमें पशु भी है और मनुष्य भी है, होते हैं पशु भी और मनुष्य पिंड से ही पैदा होते हैं, लेकिन पशु के पूंछ है, सींग है, तो मनुष्य के नहीं है, मनुष्य की बुद्धि ज्यादा तेज है। तो मन भी मस्तिष्क ये सब कुछ गुणों को लेकर चलता है जो कि हमें आवश्यक है, हमें चाहिए जिन गुणों को, वो गुण मानवीय मस्तिष्क में होते हैं। कहते हैं कि मानव का या बच्चे का कह लो कि लेफ्ट एंड राइट साइड को ले लो, लेफ्ट में मतलब बाई ओर ज्यादा मनुष्य रजोगुणी होता है और दाई ओर ज्यादा सतोगुणी होता है, लेकिन शिक्षा हमारे दाएं और बाएं दोनों ओर के मस्तिष्क को डिवेलप करती है, उसका विकास करती है। वर्तमान शिक्षा द्वारा बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और बड़े बड़े आविष्कार भी शिक्षित व्यक्तियों ने किए हैं। दया नामक गुण शिक्षा द्वारा ही बाहर लाया जाता है। वर्तमान प्रणाली इस गुण को भली भांति निखारती है। एक ही विद्यालय में अमीर गरीब बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करते हैं। अमीर विद्यार्थियों को गरीब विद्यार्थियों की सहायता का मौका प्राप्त होता है। कई बार पता चलता है कि एक सहपाठी ने दूसरे की इस हद तक सहायता की उसे पूर्ण मानव बनाने में सक्षम हो गया। वर्तमान प्रणाली भी प्राचीन प्रणाली की भांति ही एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी आपस में भाईचारे की भावना को रखते हैं और जीवन पर एक दूसरे का सहायक सिद्ध होती है। विभिन्न विद्यार्थियों में विभिन्न गुण जैसे किसी में दया, क्षमा, प्रेम, सेवा, ज्ञान, भक्ति, कर्मठता का पालन करना, दूसरों की सहायता करना आदि नैसर्गिक गुण जो है वो बच्चों में होते हैं। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इन सब गुणों को उभारने के लिए काफी स्वयंभर सहयोग भी प्राप्त होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पढ़े लिखे युवक युवतियाँ भी अध्यापक बनकर विद्यालय में आते हैं और अपने छात्राओं को उत्तम ढंग से जीवन जीने की शिक्षा बतरी के बताते हैं। अगर शिक्षक या छात्र आपस में एक दूसरे का सहयोग दे तो शिक्षा प्रणाली के दोष भी दूर हो सकते हैं। दोस्त और संघ और सब जगह पर पाए जाते हैं। प्रशिक्षण द्वारा गुणों को दूर रखकर गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो प्राचीन तथा वर्तमान दोनों शिक्षा प्रणालियाँ ठीक ही है, लेकिन अंग्रेजी राज्य में पहले ने भारतीयों को ऐसी शिक्षा देने का भरपूर प्रबंध किया था कि भारतीय छात्र केवल उनके सिपाही बने या क्लर्क बने। यहाँ तक कि IAS कुछ सर्विसेज में भारतीय छात्रों को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजों को ही अधिक महत्व दिया जाए और अंग्रेजी ही पढ़ी जाए ताकि विदेशी सभ्यता द्वारा भारत को आच्छादित कर दिया जाए और भारत सदियों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहे और अंग्रेज भारत जो सोने की चिड़िया थी उसे लूट लूट कर विदेशों में ले जाए। इस शिक्षा प्रणाली में बहुत संकट था, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में यह सब दोष नहीं है। यहाँ तक कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बच्चे के 3H हेड, हार्ट एंड हैंड तीनों का समुचित विकास करने में बहुत सक्षम है। महात्मा गांधी जी ने इसीलिए बेसिक एजुकेशन को शिक्षा प्रणाली में स्थान दिया है ताकि शिक्षा प्रणाली एक ऐसे कुछ ढंग से बच्चों को छात्राओं को आगे बढ़ने का सुनी दे कि बच्चे पढ़ लिख कर गाँव को न छोड़े, ये न सोचें कि अब हमें गांव में नहीं रहना है, हमें तो अब शहर की ओर जाना है, तो इससे गांव में हलचल बढ़ जाती है, गांव नष्ट हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बेसिक एजुकेशन के द्वारा उनको क्राफ्ट भी सिखाए जाते हैं, वो मतलब हाथ द्वारा किए जाए किए जाने वाले के काम सिखाए जाते हैं ताकि बच्चा पढ़ लिख करके भालिक बन करके बड़ा हो करके अपने गांव में ही कोई ना कोई काम करना शुरू कर दे। इस तरह से वर्तमान प्रणाली जो है ये मेरे विचार में तो इसमें नुकसान कम है और इसमें लाभ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर पूरी तरह से देखें तो इसकी हानियां बहुत ज्यादा है। वो हानि जैसा मैंने कहा आपको कि वो कुदरती दोनों पर है, जैसे आज हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही गलत काम करते हैं, ये नहीं कि अनपढ़ करते हैं, बल्कि अनपढ़ को फिर भगवान का डर है, समाज का डर है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जब नेता बन जाता है या कोई उच्च स्थान में हो जाता है या बड़ा अमीर हो जाता है तो ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली तो ठीक है, शिक्षित भी ठीक है, समाज भी ठीक है, लेकिन बात वही आती कि हमें पढ़ लिख कर अपने स्वभाव को बदलना होगा, हमें रजोगुण और तमोगुण से लेखन करके सत्वगुण की ओर जाना होगा और अपनी शिक्षा का पूरा पूरा लाभ उठाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल के लिए एक नया टॉपिक है वो तो हम कल ही करेंगे और इसके साथ ही सौनता जी ने तो बता ही दिया होगा कि 5 जुलाई को गुरु पूजा का शुभ दिन है, इसके लिए सब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। जय प्रभु गीता माँ।